विषय के स्वप्न में फंसे रहते हैं संसार के लोग। सुख का जो आभास है उसी को सुख मान लेते हैं, लेकिन ऐसे सुख की इच्छा कौन करता है जिसने पूर्ण अविनाशी सुख को जाना नहीं है, समझा नहीं है। वह अनित्य सुख में फंसा रहता है, जिसकी बाबत गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये जो सुख है इससे तो जो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनकी हम उपासना करके सुख की इच्छा करते हैं, यानी देवता लोगों की उपासना करके जिस सुख की हम इच्छा करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, वह देवता लोग भी इस सुख से डरते हैं जिस सुख को हम चाहते हैं। एक बहुत सुंदर वचन कहते हैं कि जो सुख आप चाहते हो उस सुख से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं। कौन सा ऐसा सुख है जो विषय का सुख है, क्योंकि विषय क्षणिक है और विषय से प्राप्त होने वाला जो सुख है वह भी क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए सुख लगता है लेकिन उसके पीछे दुख छिपा हुआ है। सुख मांग तो दुख आगे आवे, सो सुख हम होना मांगिया खावे। वीर जी वचन करते हैं कि ऐसा जो सुख है हमारे को नहीं चाहिए, हम ऐसे सुख की इच्छा नहीं करते जिस सुख के बाद में दुख आने वाला है, यानी उसी सुख के अंदर दुख छिपा हुआ है। वह सुख भी दुख रूप है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि यह सुख है लेकिन वो सुख जब थोड़ी देर के बाद दुख में बदल जाता है तो इससे चिंतन करना चाहिए कि सुख था ही नहीं। यदि सुख होता तो दुख में नहीं बदलता, और विषय में सुख होता तो उसी विषय से दुख कहाँ से आता। एक बच्चा है आपका, उससे जब तक आपके अनुकूल है, कोई भी व्यक्ति है, स्थान है, परिस्थिति है, जब तक आपके अनुकूल है तो आपको उससे सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वह जो परिस्थिति है, अवस्था है, व्यक्ति है, जब प्रतिकूल हो जाता है तो उसी से आपको दुख की अनुभूति होने लगती है। तो यदि उस व्यक्ति विशेष से अथवा परिस्थिति से, अवस्था से आपको सुख मिलता वो दुख में नहीं तब्दील होना चाहिए लेकिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा सुख हमारे को नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुख कौन सा है तो कहते हैं वेद भगवान की असली सुख कौन सा है, जो एक माता सुखम ना अपने सुख मस्ती, जो ब्रह्मा है, जो व्यापक है, जो सर्वप्रजामी है, सर्वाधिष्ठान है, निराकार है, ब्रह्म है, वह सुख स्वरूप है। बाकी जो संसार में आपको सुख लगता है ये केवल प्रतीति मात्र है, भ्रांति है, आनंद उसी को बोलते हैं। तो आनंद कई प्रकार का माना जाता है, हरेक विषय में हम आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये आनंद जो है ये क्षण है, आनंद आनंद सब लोग है, आनंद पूर्ते जाने, ऐसा पावन वचन करते हैं गुरुदेव जी महाराज। सब लोग संसार के कहते हैं बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, लेकिन जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, अपना स्वरूप है, वो स्वरूप रूपी आनंद कहाँ से प्राप्त हुआ? गुरु की सान्निधि से प्राप्त हुआ। जब गुरु के पास गए हैं तो वहाँ से आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए सुख तो हम चाहते हैं तो उस सुख जो सो सुख हम साच कर जाना, जैसे सुख ते शिव ब्रह्म डराना, बात ये चल रही थी कि जिस सुख से शिव ब्रह्म डराना, शिव और ब्रह्म जिस विषय सुख से, यानी जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनकी उपासना करके हम सुख की अनुभूति करते, कौन सा सुख मांगते हैं उसे? संसार का सुख मांगते हैं। लेकिन उनको पूछो कि जिनसे आप संसार के सुख मांगते हैं उनके पास कौन सा सुख है। संसार संसार का सुख उनके पास हो तभी तो आपको मिले। ये वचन कह के जहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जिस सुख ते सिर ब्रह्म जिस विषय के सुख से शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि जो श्रेष्ठ हैं वह डरते हैं, सो सुख हम साथ कर जाना, उस सुख को हमने सत्य माना है, ये सुख ही सत्य है और सुख कोई नहीं है। और यही तो सुख हम उनसे मांगते हैं, वो इस सुख से डरते हैं, हम उनसे मांगते हैं निशंक होकर के मांगते हैं। इसलिए उस सुख की जब तक इच्छा करेंगे तब तक सदीवी सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा चंक मात्र सुख मिल सकता है। जो पदार्थ हमने उपासना से कर्म से मांगा वह पदार्थ मिल जाएगा, तो वो पदार्थ मिलना ही हमारे लिए सुख है, क्योंकि पदार्थ को हमने सुख रूप माना है, विषय को हमने सुख रूप समझा है। हमारी इच्छा जो है विषय की है, हमारी तृष्णा है विषय की, हम प्रयत्न करते हैं विषय के लिए कि विषय की प्राप्ति से हमारी तृष्णा का तृष्णा की समाप्ति हो जाए। तो तृष्णा किस बात की है? सुख की। और तृष्णा की जो समाप्ति है वो हम विषय से जुड़ना चाहते हैं कि विषय की प्राप्ति से हमारी तृष्णा का नाश हो जाएगा, सुख की तृष्णा है और तो कुछ नहीं है। लाभ किस बात का है? यदि हम कोई कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं, संतान पैदा करते हैं, कुछ भी करते हैं संबंध, तो किस लिए? सुख के लिए। और सुख वहाँ होता नहीं है, सुख तो हमारे अंदर है। जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं कि मेरे को हंसी आती है मछली के ऊपर, जो जल में रहती हुई भी मेरे को हंसी आती है, जल में मीन प्यासी वहाँ रहती हुई भी उसको प्यासा उसकी मिट नहीं रही, देखो 24 घंटे उसका जीवन ही पानी है, लेकिन तब भी कहते हैं कि मुझे हंसी आ रही उसको देख करके कि वो जल में मीन प्यासी, जल के अंदर रहती हुई भी उसकी प्यासा की तृप्ति नहीं हो रही। तो कारण क्या है? जल में रहते हुए उसको जल पीने की युक्ति नहीं, उसके अंदर जाता नहीं, अंदर जाता है तो निकल जाता है बाहर, जल जाता है उसके अंदर जाते जाते बाहर निकलता रहता है तो प्यास उसकी बुझती नहीं है। तो हाँ, हमारा भी तो यही हाल है, हम इस संसार में रहते हुए सुख स्वरूप हैं तब भी हमारे को सुख की अनुभूति नहीं हो रही, यानी हमारी तृप्ति नहीं हो रही, सुख की अभिलाषा हमारी बनी ही रहती है। सुख सुख स्वरूप होते हुए भी हम सुखी नहीं हो पाते, तब भी कहते हैं मैं दुखी हूँ। दो प्रकार का द्वंद हमारे अंदर बना रहता है, जब समय अनुकूल होता है, परिस्थिति अनुकूल होती है तो कहते हैं मैं बड़ा सुखी हूँ, तो जब प्रतिकूलता आती है तो मैं बड़ा दुखी। इसलिए ये सुख दुख की द्वंद्वात्मक सृष्टि हमारी चलती रहती है। लेकिन सदीवी सुख जो है वो हमारे स्वरूप का सुख है, और ढूंढते हम कहाँ से हैं? कर्म से अथवा उपासना से। पहले वाले मंत्र जो हमने विचार किया था, ईशावास्य मधुर सर्वम जगत जगत त्याग जगत, उसमें बतलाया था कि आप संसार में प्रपंच को देखो किस दृष्टि से, यदि सुखी होना चाहते हो तो इसको ईश्वर मय देखो, ईश्वर का दर्शन करो। इसका मतलब है कि ईश्वर ही सुख स्वरूप है। संसार को तो हम देख रहे हैं, देखते हुए कभी सुखी कभी दुखी हो रहे हैं, तो हमारी दृष्टि बदलने की बात यही थी कि आप दृष्टि बदल दो तो आप सुखी हो जाओ, क्योंकि संसार ही तो दुख है और क्या दुख है, संसार ही दुख है और परमात्मा सुख है। यो वही भूमा तत् सुखमना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में यानी सुख नहीं है तो अल्प क्या है? परिच्छिन्न। परिच्छिन्न क्या है? नाम रूप, ये परिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न जो भूमा है, व्यापक है, व्याप सबको ढक रखा है जिसने, वह सुख स्वरूप है। ये जब श्रुति ने ऐसा कह दिया तो हम हमने दृष्टि तो बदलनी है, अल्प से दृष्टि हटा दीजिए, परिच्छन्न से दृष्टि हटा दीजिए, अपरिच्छन्न जो सर्वाधिष्ठान है ऐसी अपनी दृष्टि बना लीजिए। केवल दृष्टि को बदलना ही सुख रूप होना है। दृष्टि के कारण हमारे को दुख लग रहा है क्योंकि हमारी परिच्छन्न के ऊपर सुख दृष्टि हो रही है। यह तो परिच्छन्न है, जो कार्य कर्म संघात है ये परिच्छन्न है। हम इसमें से सुख देखते हैं, इसके साथ असक्त होकर के हम सुखी होना चाहते हैं। जैसे कर्म करके अथवा ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, अंतःकरण से, मन बुद्धि से संसार के पदार्थ पकड़ते हैं ना, उसी प्रकार हम प्रभु पिता परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसको भी इसी प्रयत्न से पकड़ना चाहते हैं। तो आज वाला मंत्र जो है उसमें कह रहे हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते तत भूय इवते तमो या विद्यायामरता। आज वाले मंत्र में ऐसा कहा है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधतमा प्रवेश की अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, आगे कहते हैं कि जो विद्या की उपासना करते हो उससे भी घोर अंध में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर समझ आनी बहुत कठिन है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं कि तो ठीक है बात कि वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, पर कहते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी घोर अंध में प्रवेश करते हैं। विद्या और अविद्या दो प्रकार की बात यहाँ पर कही है। अविद्या यानी अज्ञान के क्षेत्र में जो रहते हैं। अविद्या से क्या यहाँ पर लेना है, कर्म। जो कर्म का अनुष्ठान करते हैं, केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो क्या है, अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो अंधम तमा प्रविशन्ति वो लोग जो क्या करते हैं, अविद्या, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्या से लेना है कर्म, कौन सा कर्म, जो हम अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, जगजालादि कर्म करते हैं, कि जो कर्म की उपासना इस प्रकार अविद्या की उपासना करने वाले लोग, क्योंकि जिनका ये रहता है कि मैं अपने होत्रादि कर्म करूँ स्वर्गादि कर्म, स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए, वो लोग हर रोज उपासना को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के केवल कर्म में रहता है, अविद्या की ही उपासना करते हैं। इसलिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाकर के सुख भोगेंगे, तो वहां पर भी कहते हैं कि अंधकार है, जो अंधकार में यानी जड़ता में प्रवेश करते हैं। जड़त्व बुद्धि है उनमें। जो स्वर्ग आदि लोग हैं वहां जाकर के जो सुख चाहते हैं वहाँ उनको यो सुख मिलेगा तो नहीं, थोड़ी देर के लिए फल भोगने के बाद फिर दुख मिलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि केवल जो कर्म करते हैं, उपासना भक्ति के सहित नहीं करते, केवल जड़ता बुद्धि से कर्म करते हैं, संसार कर्म में लगे रहते हैं, उनकी क्या हालत होती है कि अंधम तमाम अंधकार में, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग विद्या की, विद्या का अर्थ है उपासना, जो विद्या की उपासना, जन जो उपासना में लगे हैं, उपासना का अर्थ जो देवता ज्ञान रूपी उपासना में लगे हैं कि देवता का ज्ञान हो, फिर जब देवता संबंधी उनको ज्ञान हो जाता है तो फिर उस देवता की प्रसन्नता के लिए इच्छा करते हैं, जब इच्छा के लिए प्रयत्न करते हैं, तो कर्म नहीं केवल उपासना में लग जाते हैं, जड़ता बुद्धि से कर्म छोड़ देते हैं, उपासना में लग जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कर्मी से ज्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार उपासना की बात कही और कर्म की बात कही। तो जब ऐसा कहते हैं तो फिर समझना पड़ेगा कि ये बात क्या है। दो चीज की निंदा जब अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन पहले शुरू में कहा था कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन किया था कि वो ईशावास से दृष्टि बना करके त्याग पूर्वक कर्म करें, क्योंकि भोग में त्याग हो अर्थ में निर्लोभता हो, तो उस मंत्र से ज्ञान निष्ठा के लिए कहा। और कुर्वन्ने वे कर्माणि, जो अभी आत्मनिष्ठ नहीं है उनको कहा था कि वो लोग कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। लेकिन जहाँ पर कहते हैं जो कर्म करने में लगे रहते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो उपासना करने में लगे हुए हैं वो उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर कर्म की और ज्ञान उपासना की दोनों की अलग अलग निंदा करते हैं कि जो लोग दोनों को सामंजस्य नहीं बैठा पाते, एक को करते हैं तो दूसरे को छोड़ करके, दूसरे को करते हैं तो दूसरे को छोड़ करके, तो केवल कर्म करने से अभिमान हो जाता है उनके अंदर। जो लोग केवल कर्म करते हैं उनके अंदर कर्म का अभिमान हो जाता है, कर्ता भोक्ता पने का अभिमान हो जाता है। तो जब कर्ता भोक्ता पने का अभिमान हो जाता है तो जब कर्तृत्व अभिमान हुआ फिर उसका फल भोगना पड़ेगा, फिर भोक्ता भी बनेंगे। यदि उपासना साथ में रहती है तो दो चीजें किस लिए कहें, कर्म और उपासना। कर्म से क्या होता है, हमारे चरित्र की शुद्धि होती है। उपासना से क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, एकाग्रता बनती है। इसलिए जब एक करेंगे दूजा नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। यानी केवल कर्म करेंगे तो जड़ता बुद्धि हो जाएगी, वो भी सकाम कर्म करेंगे तो फिर आना जाना पड़ेगा। यदि निष्काम कर्म करते हैं तो उसका फल क्या होता है, कर्म का फल क्या है, उपासना का फल क्या है, अलग अलग फल बतलाया कि कर्मणा पितृलोक। कर्म से क्या होता है, कर्म करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, और विद्या देवलोक, विद्या यानी उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति, और विद्या से यानी उपासना से देवलोक की प्राप्ति। दोनों का अलग अलग फल भी बतलाया, लेकिन यहाँ पर दोनों की निंदा करने का तात्पर्य यह है कि दोनों का समुच्चय बता रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा करना चाहिए। इकट्ठा एक ही काल में नहीं हो सकता। आप जैसे थोड़ी देर के लिए पहले कर्म किया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उपासना भी करते, इस प्रकार से दोनों को करना चाहिए। दोनों के करने से क्या होगा कि कर्म जब निष्काम करेंगे तो हमारे अंतःकरण का जो माल विक्षेप आवरण दोष है उसकी निवृत्ति होगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पहले व्यवहार शुद्धि, आहार शुद्धि, आचार शुद्धि, ये भी तो चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या चाहिए कि जो हमारे को विहित कर्म है उनको करना चाहिए, जिस खाने के लिए हमारे को बोला है वह खाना चाहिए, जो हमारे को पीने के लिए बोला है वह, यानी हमारे आहार में शुद्धि, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ऐसा भी वचन है श्रुति का, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि होने से सत्व की शुद्धि होती है, जैसा बोलते हैं ना कि जैसा खाए खाना वैसा होवे मन, इसलिए बोलते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। ये श्रुति का वचन है कि आहार शुद्धि से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। यदि हम तामसी भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा, अंतःकरण में विकार पैदा होंगे, वो खाना हमारे अंदर दोष पैदा करता है, अंतःकरण में करता है और शरीर में रोग आते हैं, दोनों ही बात है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना पड़ता है, जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो मल है, विक्षेप है, मल की शुद्धि होती है, विक्षेप की नहीं, विक्षेप तो चंचलता है, उससे नहीं होती है। केवल कर्म निष्काम करने से जो मल है हमारे अंदर, मल क्या है, जन्म जन्मांतरों के पापों के संस्कार, यही मल है। वो जब तक मल हमारे अंदर रहती है तो कोई भी हमारे अंदर ज्ञान की जिज्ञासा नहीं पैदा होने देती, शुभ कर्म की जिज्ञासा नहीं हमारे अंदर पैदा होने देती, हमारी बुरी वासनाएं उठती रहती है मल के कारण। तो जन्म जन्मांतरों के पापों के संस्कार ही मल है, तो उस मल को हटाने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। तो केवल निष्काम कर्म करने से बात बनने वाली नहीं है, मानो निष्काम आपने कर्म किया तो उससे आपके अंतःकरण की शुद्धि हुई, परंतु अभी आपका अंतःकरण साफ तो हो गया, मानो एक शीशा है, शीशे में हमने अपना मुंह देखना है, तो शीशे को पहले दिखता नहीं था तो आपने उसको साफ किया, शीशे को साफ करने के बाद भी शीशा हिल रहा, तब भी मुंह तो आपका दिख रहा लेकिन हिलता हुआ दिखता है, टिका में नहीं दिखता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, शीशे को टिकाना पड़ेगा, तब आपका मुख साफ भी दिखेगा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा, जब तक शीशा हिलता है तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसी प्रकार जो हमारा अंतःकरण रूपी शीशा है उसको हमने निष्काम कर्म से साफ तो किया लेकिन चंचल है, हिल रहा, जब तक हिल रहा है तो उसमें हमारे को जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा सुख स्वरूप है, उसकी अनुभूति शांति हमारे को नहीं रहे, शांत नहीं होगा चित्त, इधर उधर भटकता रहेगा। जो भटकता रहता है उसको हटाने के लिए क्या करना है, उपासना, भक्ति। तो जब उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसका फल क्या है, जो चित्त की चंचलता है ना, वह समाप्त हो, यानी मन टिक जाता है। तो जब टिक जाता है मन तो उसके अंदर ही अनुभूति होती है, जब तक दौड़ता रहता है, दुलायमान रहता है, तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो लोग केवल कर्म करते हैं या केवल उपासना करते हैं, जो अविद्या की यानी कर्म का अनुष्ठान अग्निहोत्र आदि कर्म में लगे रहते हैं, वो क्या है, वो तो अंधकार में प्रवेश करते हैं, यानी वो जड़ता में प्रवेश करते हैं, उनको कर्तृत्व अभिमान की प्राप्ति होती है और कुछ नहीं होता। और जो लोग विद्या की उपासना करते हैं, यानी उपासना का अनुष्ठान करते हैं, केवल उपासना करते हैं, उपासना का अर्थ है ज्ञान इंद्रियों के भोग, अथवा जो इंद्रादि देवता हैं उनकी उपासना, इंद्रियों के भोग अथवा देवताओं की उपासना करनी, कि हमारे को देवलोक, देवता, जिस देवता की हम उपासना करते हैं उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। जब उपासना करते हैं यदि तो उपासना पूर्ण हो जाती है तब तो हम उस देवता के लोक में पहुंच जाते हैं, ऐसा बताते हैं कि यदि किसी की उपासना पूर्ण हो गई तो वो देव, जिस देवता की उपासना की उस देवता के लोक में पहुंच जाएगा। तो यदि उपासना नहीं पूरी होती है तो उस देवता का वाहन बन जाता है, कुछ न कुछ उसको फल तो मिलता है। तो इसी प्रकार कर्म करने से क्या मिलता है, पितृलोक, और उपासना करने से क्या मिलता है, देवलोक। लेकिन जो लोक आपने अपनी इच्छा से प्रयत्न से प्राप्त किया है वह लोक भी तो अनित्य है। जो आपने खेती कृषि व्यापार आदि जो करते हैं आप, उससे क्या होता है, जो भी उसका फल मिलता है आपकी उधर पूर्ति करता है और कुछ नहीं करता है। आपने बिजनेस से जो पैसा कमाया है, किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से जो आपने धन इकट्ठा किया है, केवल से कुदरत मूर्ति होती है आपने और कुछ नहीं होता, कुदरत मूर्ति से सिवाय कुछ भी नहीं होता। उसको देख करके घर में पड़ा है तो आपको सुख लगता है कि मेरे घर मेरे पास पैसा है, मेरे को मकान है, तो आप समझते हैं कि मैं सुखी हूँ, कुछ भी हुआ से। इस प्रकार कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ करके उपासना और कर्म यदि दोनों अलग अलग करते हैं तो उनको कहते हैं कि वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार। इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों को इकट्ठा करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए उपासना भी करनी चाहिए, दोनों करने चाहिए। कर्म करने से अंतःकरण में बाल दोष की निवृत्ति होगी और उपासना करने से विच्छेद जो चंचलता है उसकी निवृत्ति होगी। तो तीसरा क्या दोष बचेगा, आवरण। जो आवरण दोष है उसकी ना कर्म से ना उपासना से दोनों से निवृत्ति नहीं हो सकती, आवरण नहीं जाएगा। कर्म उपासना से बाल और विच्छेद दो जा सकते हैं। आवरण का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति ना कर्म से होती है ना उपासना से होती है, केवल ज्ञान से होती है। क्योंकि जो कर्म है और उपासना है वो अज्ञान के विरोधी नहीं है, जो विरोधी होगा वही तो हटाएगा उसको। कर्म का और उपासना का अज्ञान के साथ विरोध नहीं है। कर्म आप करते हैं तो अज्ञान में तो करते हैं, यदि उसका विरोध हो तो कर्म जो है अज्ञान को हटा दे। उपासना कब होती है, जब आपको अपूर्ण ज्ञान रहता है। कर्म में कब होता है, जब अपूर्ण ज्ञान रहता है। जब किसी को पूर्ण ज्ञान रहेगा तो कर्म उपासना कहाँ करेगा, जिस दृष्टि से करता है उस दृष्टि से ही करेगा। कर्म और उपासना अज्ञान के विरोधी नहीं है, इसलिए उनके करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जो जिसका बुद्धि होता है उससे आने पर ही जाता है, नहीं तो जो जिसकी सामर्थ्य ना हो पास में बैठा रहे तो बुद्धि कौन पर नहीं पड़ता। जो उससे शक्तिशाली होता है उसके आने पर वो भाग जाता है। तो कहते हैं कि कर्म और उपासना के होते हुए भी अज्ञान बैठा रहता है, वो जाता नहीं है क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है, ये तो अज्ञान में ही होते हैं। तो जब ज्ञान होता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, वो भी कौन सा ज्ञान, सामान्य ज्ञान से नहीं। सामान्य जो ज्ञान है वो भी अज्ञान का विरोधी नहीं है। जैसे पहले भी हमने एक दिन बतलाया था कि जो सामान्य झूठ है वो किसी को कुछ कहती है क्या, मानो सामान्य धूप में आपने कागज रखा है तो कागज को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप लेंज लेकर के तो कागज के सामने लगाते हैं तो कागज जलने लगता है। सूरज के सामने शीशा करते हैं तो वही कागज जो है जलने लगता है। तो पहले भी धूप में पड़ा था, पहले क्यों नहीं जला। इसका मतलब जो सामान्य धूप है वो नहीं जलाता, लेकिन जब उसी को आपने उसके लेंज के द्वारा उसके अंदर होकर के गई तो जलाने लगती है। उसका मतलब विशेष जो धूप है उसने जलाया। जैसे सामान्य अग्नि तो सभी लकड़ियों में है, जितनी लकड़ी आपको दिखाई पड़ती उसके अंदर है। सगल वनस्पत में वह संतर, सगल दूध में किया, संपूर्ण दूध जितना आपको दिखाई पड़ता सब में घी है, लेकिन कभी खाया किसी दूध में से कभी किसी को घी का स्वाद आता है, कभी भी नहीं आता, लेकिन है ना उसमें, कोई कह नहीं सकता कि इसमें घी नहीं है। और लकड़ी जहाँ पर है किसी को जलाती नहीं है, विशेष अग्नि जब प्रकट होती है तो जलाती है। इसी प्रकार जो सामान्य ज्ञान है उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, विशेष ज्ञान से होती है। तो विशेष ज्ञान कौन सा है, वृत्ति ज्ञान। विशेष ज्ञान है वृत्ति ज्ञान। तो हमारी वृत्ति जब कर्म अनुष्ठान में लगी रहती है तो उससे कर्म जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं होती। उपासना में रहती है तो तब भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जब हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होती है तब अज्ञान का नाश करती है। इसलिए पहले भी कई बार हमने प्रकृति का विचार किया कि ज्ञाने का कर्म अभ्यास, कर्म और उपासना ज्ञान में सहायक है। मुक्ति हमारी जो सुख स्वरूप की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है, दुख की अत्यंत निवृत्ति है, वो तो ज्ञान से ही होती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमा प्रवेशन तीरे अविद्या उपासते, अविद्या यानी जो कर्म में लगे रहते हैं, इंद्रिय के भोग में लगे रहते हैं, अविद्या का अर्थ कर्म, जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, जड़ता में प्रवेश करते हैं। और जो लोग उपासना विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार को अंधकार में जाते हैं। तो यहां पर दोनों की अलग अलग जो है निंदा कर रहे हैं। निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, कहते हैं कि दोनों का अलग अलग एक एक चीज में लगे रहेंगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। दोनों का सहस इकट्ठे करना चाहिए, कर्म के साथ साथ उपासना भी करनी चाहिए, तब आपके अंतःकरण की शुद्धि भी होगी, आपका चरित्र भी शुद्ध होगा, अंतःकरण का जो विक्षेप है, चांचल्य है, वो भी दूर होगा। तो दूसरे मंत्र में ये इकट्ठे तीन तीन मंत्र आए। अब दूसरा मंत्र है दशवां, उसमें कहते हैं कि अन्य देवाहूद्या अन्य दाहूद्या इति सुषुमा धीराणाम जेन स्तभ चक्षुरे विद्या। कहते हैं कि विद्या देवता विज्ञान उपासना, पहले बताया था ना कि विद्या से दूसरा फल मिलता है, अन्य अलग फल मिलता है, इससे विद्या, विद्या से अलग फल मिलता है और विद्या से अलग फल मिलता है। ये किसने बताया? धीराणाम, जो धीर पुरुष हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो आप तबका है, उनसे हमने सुना है कि विद्या का फल अलग है और विद्या का फल अलग है। ये उन लोगों ने बताया जो इसके रहस्य को जानने वाले थे, ये जान धीर धीर जिनको हम बोलते हैं धीर। तो कहते हैं कि धीर पुरुषों जो वो है, वो जो श्रुति के भेद को जानते हैं, जो मंत्र दृष्टा है, जिन्होंने मंत्र का अनुभव किया है, श्रुति अपने ऊपर नहीं ले रही है, कहती है कि धीर लोगों से सुना है, ये वेद कह रहा है कि धीर लोगों से सुना है कि विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है। तो इसका मतलब हुआ जो पीछे बात कही थी, जो विद्या को मानने वाले हैं, विद्या की उपासना करने वाले हैं, वो अविद्या वालों से भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि दोनों की उपासना अलग अलग फल है, इसलिए दोनों की उपासना का ये नहीं कोई फल ही नहीं है, जो कर्म करता है उसको फल ही नहीं मिलेगा, जो उपासना करता है उसको फल ही नहीं मिलेगा। दोनों की उपासना का अलग अलग फल है, कर्मणा त्रिलोकः विद्या देवलोकः, ये फल है ना कि कर्म से, कर्म से क्या होता है, कर्म से क्या होता है, पितृलोक की प्राप्ति होती है, और कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है और उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन हम तो दोनों लोगों से अलग, हमारे को क्या चाहिए? आत्म तत्व चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म में स्थिति चाहिए। तो हम कर्म और उपासना दोनों करेंगे लेकिन निष्कामता से करेंगे, तो फिर यानी तीसरा जो हमारा आवरण दोष है उसको हटाने में ये लोग सहायक है। कर्म और उपासना दोनों का फल है, कोई सकाम रूप से करेगा तो कर्म करके पितृलोक में जाएगा और उपासना करके देवलोक में जाएगा। यदि इन्हीं दोनों को कोई निष्कामता से करता है तो उसको फल क्या मिलता है? उसके अंतःकरण की चरित्र की शुद्धि होती है, तो उसको फिर ज्ञान की जिज्ञासा होती है उसके अंदर। तो तीसरा मंत्र इसी का ही है, कहते हैं विद्यांचा अविद्यांचा जस्तद वेदो भयंस अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मतलस्मते। तो फिर कहते हैं कि जो मनुष्य विद्यांचा जो लोग उपासना को अथवा कर्म के अनुष्ठान को दोनों को साथ साथ समुच्चय रूप में जानता है करता है उसको क्या होता है, जो इनका अनुष्ठान करता है कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु तीर्त्वा जो अलग अलग करते हैं उनका भी बता दिया। अब कहते हैं जो मनुष्य उपासना और कर्म को साथ साथ करना जानता है दोनों को इकट्ठा करता है उसको क्या फल मिलता है, उसको ये फल मिलता है कि अविद्या मृत्यु तीर्त्वा अविद्या यानी कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके तो विद्या से अमृत को प्राप्त हो जाता है। तो कहेंगे कि कर्म से मृत्यु को कैसे करेगा, कर्म करते हुए तो मृत्यु को कैसे पार होगा, तो यहाँ पर मृत्यु का अर्थ है कि जो स्वभावक हमारी प्रवृत्ति है कौन सी, हम आलस और प्रमाद के द्वारा कर्म करते हैं, आलस से जो होता है प्रमाद होता है वो ही यहाँ प्रमाद प्रमाद को ही मृत्यु कहा है और कोई मृत्यु नहीं है। वैसे तो प्राण योग को मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु को नहीं कर सकता कर्म करके, उस मृत्यु को तो ज्ञान से ही करेगा। तो जब कहते हैं कि कर्म का तो उसको फल मिलता है कि कर्म से मृत्यु को पार कर जाता है, तो कौन सी मृत्यु है जो प्रमाद रूपी मृत्यु है आलस रूपी मृत्यु है उसको पार कर जाता है। जब कर्म करेगा कर्तव्य बुद्धि से तो उसके अंदर जो प्रमाद है वो प्रमाद से उठ जाएगा, उसके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा, उसका आलस जो है हट जाएगा, यानी कर्म को जड़ता से नहीं करेगा, जड़ता उसके अंदर से खत्म हो जाएगी और क्या करेगा, उपासना करेगा तो उसको कहते हैं अमृत को प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि प्रमाद का अर्थ क्या है, एक शरत सुजातीय में लिखा है कि प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमी, वो कहते हैं शरत कुमार जी महाराज कि हम प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं, प्रमाद ही मृत्यु है। तो प्रमाद का अर्थ क्या होगा, प्रमाद यानी भूल जाना, ये कहते हैं हम कि हमारे को प्रमाद हो गया हम भूल गए। कहते हैं कि प्रमाद का अर्थ भूलना नहीं है, प्रमाद का अर्थ है भोगासक्ति। जो कर्मों के द्वारा क्या होता है कि इस प्रमाद को जीत जाता है, जब कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है तो भोग में आसक्ति उसकी नहीं रहती, ये इसका प्रमाद से बचना है। उसकी कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने से भोग में त्याग आता है, जो भोग में आसक्ति थी वो उसकी हट जाती है। तो यानी उसने क्या किया, जो भोग में आसक्ति रूपी प्रमाद था उसको जीत दिया, और दूसरा क्या है आलस को जीत देता है। जो कर्मठ व्यक्ति है ना वो क्या करता है, वो कर्म कर्तव्य बुद्धि से जब करता है तो उसकी जो देह नाश में उसकी आसक्ति थी उसको पहचान जाता है, इसलिए वो जो देह दृष्टि है ना इस देह दृष्टि रूपी मृत्यु से पार हो जाता है। जो जड़ता से कर्म करता है केवल उसकी देह दृष्टि रहती है कि मेरा शरीर ना कभी नाश हो जाए, तो जब कर्तव्य बुद्धि से करता है तो ये जो प्रमाद था ना देह दृष्टि थी इससे कहते वो पार हो जाता है। और फिर कहते हैं कि अविद्या का जो अर्थ है कर्म है, तो कर्म से क्या होता है, हमारे चित्र की शुद्धि होती है, अर्थात जो हम ज्ञान इंद्रिय मन तथा बुद्धि वृत्तियों से क्या करते हैं उपासना करते हैं उसके द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो जब हम देह दृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, यही तो देह दृष्टि से ऊपर उठना है। देहाध्यास उसका नष्ट हो जाता है। पहले उपासना करता था तो दैहिक सुख के लिए, ऐहिक सुख अथवा जो पारलौकिक सुख है दोनों के लिए करता था जड़ता बुद्धि से। जब उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है तो इस देह दृष्टि से ऊपर उठ जाता है, तो फिर उसके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा पैदा होती है। जब ज्ञान की जिज्ञासा पैदा हो जीव के अंदर, उसी के अंदर होती है जिसने निष्काम कर्म निष्काम उपासना की है, साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा अधिकारी है, फिर उसके अंदर जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। तो जब तत्व जिज्ञासा की उत्पत्ति हुई तो उस तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए फिर वो क्या करता है, गुरु की खोज करता है, गुरु के पास जाना चाहता है। क्योंकि तत्व जिज्ञासा की पूर्ति उसने देख लिया, कर्म से भी निरत हो गया और उपासना से भी निरत हो गया, यानी कर्म उपासना करके उसने देख लिया, पहचान लिया कि इससे तत्व जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती। उसके अंदर ज्ञान की केवल अभिलाषा होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं। कर्म उपासना के बाद में तो केवल मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित् जगति सिद्धये, यततापि सिद्धा नाम कश्चित् मां वेति तत्वतः, ऐसा भगवान कहते हैं कि जो सहस्र मनुष्य है, हजार मनुष्यों में से कोई एक है जो यत्न करता है, वो कोई एक होता है ना जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। सबके अंदर नहीं, सब अधिकारी थोड़ी बनते हैं, है तो सबको अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन अधिकारी बनते नहीं है। अधिकारी बनने के लिए पहले जो करना पड़ता वो नहीं करते। तो जब किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है तो उस जिज्ञासा के लिए कहती है श्रुति कि कहाँ जाना चाहिए, तत्व ज्ञानार्थम सगुरु वेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। उस तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना पड़ता है। जब ऐसे जाता है तो फिर वो लोग कृपा करते हैं, जब उनकी सेवा सिमरण करता उनके पास रहता है तो कभी उनकी जब प्रसन्नता हो तो भगवान कहते हैं तर्क से नहीं, शंका से नहीं, उनकी परीक्षा के लेने के नहीं, जो जिज्ञासु होता है उसको क्या करना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। जब वो उनके पास नम्रता से रह करके सेवा करके तो उनसे पूछता है, तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए पूछता है, फिर उसको वो उपदेश करते हैं। तो जब गुरु उपदेश करते हैं किसका, महावाक्य का उपदेश करते हैं तत्वमसी, तो उस महावाक्य के द्वारा, महावाक्य के ज्ञान का अर्थ क्या है, मानो जैसे हम किसी आदमी को जानते नहीं हैं, वो हमारे पास में ही बैठा हो, उसको हमने मिलना है, हमारे पास में ही बैठा हो तो हम उसको मिल नहीं सकते, दूसरे ने हमारे को बता दिया कि ये आदमी है, तो क्या है, पहले हम देख तो रहे थे उसको, हमारी आंखों के सामने तो था, प्रत्यक्ष तो था हमारे सामने, अप्रोक्ष नहीं था, मालूम नहीं था। तो जब किसी ने बता दिया तो वही अप्रोक्ष हो गया। इसी प्रकार ही जो तत्वमसी आदि महावाक्य हैं उससे क्या करते हैं गुरु लोग, सामान्य रूप से तो हम जानते थे अपने आप को, लेकिन अप्रोक्ष नहीं था अपना, जैसे उस आदमी का अप्रोक्ष हो गया, हुआ कुछ नहीं, प्रत्यक्ष था पहले ही, अप्रोक्ष हो गया, उसी प्रकार हमारे को अपना स्वरूप सामान्य रूप से मालूम था, लेकिन विशेष रूप से अज्ञान था, इसलिए संशय हो रहा था, भ्रांति हो रही थी। जहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान होता है, विशेष रूप से अज्ञान होता है, वहाँ पर भ्रांति होती है। तो गुरु लोगों ने तत्वमसी आदि महावाक्य से जो हमारा बोध था बीच में, हमारे को विशेष रूप से अज्ञान था, वो विशेष रूप वाला अज्ञान हमारा मिटा दिया, हमारी लक्षणा से उन्होंने वृत्ति को ब्रह्माकार बनाने की युक्ति जब बताई तो विशेष ज्ञान होने से हमारे अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो हमारा साक्षात प्रोक्षात ब्रह्म जो हमारा स्वरूप था उसकी हमारे को अनुभूति हो जाती है। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज।